In our last session we saw how God created the universe with one word.
हमने पिछले सेशन में देखा कि किस प्रकार से एक शब्द के द्वारा परमेश्वर ने पूरे संसार को पूरे विश्व को बनाया.
It was the easiest thing for God to create the universe.
और ये परमेश्वर के लिए बहुत ही आसान काम था पूरे विश्व की रचना करना.
As easy as it is for you to speak a sentence, God could speak a sentence and create the universe.
और जैसे कि आप लोग एक शब्द बात करते हैं वैसे ही परमेश्वर के लिए ऐसा ही आसान था पूरे विश्व का रचना करना.
It's very easy for God to create the universe.
और बहुत ही आसान काम था परमेश्वर के लिए पूरे विश्व का जो है रचना करना.
What is today the most difficult thing for God to do?
लेकिन आज के समय में परमेश्वर के लिए सबसे मुश्किल का काम क्या है?
As I've thought about it, the most difficult thing for God to do is to keep a man or a woman humble after he has blessed them.
और परमेश्वर के लिए सबसे मुश्किल काम यह है कि एक पुरुष या स्त्री को नम्र बनाकर रखना.
After he has blessed them.
और उनको आशीष देने के बाद.
Because once God has blessed you in some way,
परमेश्वर किसी भी तरीके से आपको आशीष देता है,
spiritually or materially,
और आत्मिक तौर से या वस्तुओं के तरह से,
we have a tendency to get puffed up,
और एकदम से हमारे अंदर फूलने की एक आदत रहती है,
we think we are special,
और फिर हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ विशेष व्यक्ति हैं.
We have this crazy idea that God loves us more than other people.
फिर हमारे अंदर ऐसा सोच आता है कि परमेश्वर दूसरों से अधिक हमसे प्रेम करता है.
Because we all have this tendency to compare ourselves with others.
हमारे अंदर ऐसा एक स्वभाव रहता है कि हम दूसरों की तुलना अपने आप से करने लगते हैं.
Do you know that all pride comes by comparing ourselves with other people?
जब हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं तब हमारे अंदर अहंकार आने लगता है.
I often ask this question.
और मैं ज्यादातर अक्सर ऐसा प्रश्न करता हूँ.
If a child got 10 out of 100 in mathematics in a class, can he be proud?
अगर जो एक बच्चे को 100 में से 10 अंक आते हैं क्या उसके अंदर घमंड आ सकता है?
Yes or no?
हाँ या नहीं?
Okay. All the others in the class got 5, 4, 3, 1, 0.
उसके कक्षा के बाकी बच्चों को 5, 3, 2, 1 ऐसे अंक आए हैं तो
कैन ही बी प्राउड?
क्या ऐसी स्थिति में उसके अंदर घमंड पैदा होगा?
He got 10 out of 100 and he comes home and says, "Mummy, I came first in the class."
हाँ, हालांकि 100 में से 100 नहीं आया, केवल 100 में से 10 ही आया, फिर भी वो बोलेगा कि मैं कक्षा में सबसे प्रथम स्थान पर हूँ.
How can a person be proud when he gets 10 out of 100?
किस प्रकार से एक के अंदर घमंड आ सकता है जब उसको 100 में से 10 मिला हो?
Because of comparison.
क्योंकि तुलना करने के कारण.
See, you're not such a spiritual person.
और आप इतना अधिक कोई आत्मिक व्यक्ति नहीं है.
How did you become proud?
लेकिन आपके अंदर घमंड कैसे आया?
Because you are comparing yourself with other people who have got 5 or 4 or 3 and you think you're great.
क्योंकि आप अपनी तुलना जो है उन व्यक्तियों के साथ करते हैं जिनको 5 या 3 या 2, 1 अंक आया हो.
Even though you only got 10 out of 100.
हाँ, हालांकि आपको 100 में से 10 अंक ही मिला होगा.
You see the foolishness of pride.
देखिएगा ये जो मूर्खता है जो घमंड का.
You take the same boy who got 10 out of 100.
और उसी लड़के को लो जिसको 100 में से 10 मिला है.
Put him in another school.
दूसरे स्कूल में भेजो.
Where everybody in the class is getting 98, 99, 100.
और जहाँ पे उसको 100 में से 100 मिलते हैं जहाँ पे दूसरे बच्चों को.
Then what happens to him?
फिर क्या होता है?
He doesn't come home excited.
और वो पूरे उत्तेजना के साथ घर में नहीं आएगा.
He says, "Mummy, I came last in the class."
वो आके बोलेगा कि मम्मी मैं सबसे आखिरी स्थान पर आया.
Suddenly he became very humble.
और एकदम से वो बहुत नम्र हो जाएगा.
By comparison.
और वहां पे भी क्या होता है? अपनी तुलना दूसरों से कर रहा है.
So pride comes through comparison.
तुलना करने के कारण घमंड आता है.
Humility comes through comparison.
और नम्रता भी तुलना के साथ आता है.
So if the devil will always make you look at other people who are not as good as you.
और शैतान जो है उन लोगों को तुम्हें दिखाएगा जो तुम्हारे उतना अच्छा नहीं है.
And show that you are better than them.
ताकि आपको महसूस हो कि आप उनसे बेहतर हैं,
टू पफ यू अप,
ताकि आपको फुलाएं.
बट व्हेन इट कम्स टू मटेरियल थिंग्स,
लेकिन जब वस्तुओं की बात आती है,
ही विल नॉट लेट यू लुक एट पीपल हु गॉट लेस देन यू बिकॉज़ यू मे बी हैप्पी देन.
और आपको जो है आपसे कम आशीषित लोगों को नहीं दिखाएगा.
He will show you things, people who got more than you, so that you can always be jealous and covetous and want more and more.
और ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आएगा जिनके पास ज्यादा है आपसे, ताकि आपके अंदर जलन पैदा हो.
We must not be ignorant of the tricks of Satan.
और हमें शैतान के जो चलाकियां हैं उससे अज्ञान नहीं रहना चाहिए.
So remember this.
हमेशा याद रखें.
In spiritual matters, he will make you look at other people and think you're more spiritual than them.
और आत्मिक तौर से वो हमेशा हमारे से कम आत्मिक लोगों को हमसे मुलाकात करेगा, ताकि हम जो है घमंड महसूस करें.
In earthly things, he will not allow you to look at the people in the slum and say, give thanks that you are so much better than them.
और संसारिक तौर से वो कभी भी आपको जो है कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से नहीं मिलाएगा, ताकि आप जो है परमेश्वर का धन्यवाद दे सके.
Then you will not grumble and complain.
फिर उनकी तुलना अपने आप से करेंगे तो कभी भी आप शिकायत नहीं करेंगे, कुटकुटाएंगे नहीं.
The devil wants you always to be covetous, wanting more.
और शैतान चाहता है कि आपके अंदर लालच रहे, हमेशा आप और चाहें.
To grumble and complain.
ताकि आप हमेशा कुटकुटाते रहें.
He will show you people who got more than you.
इसलिए उन लोगों को दिखाएगा जो आपसे ज्यादा रखते हैं.
And then you'll be covetous.
फिर आप जो है लालसा करने लगेंगे और जलन रखेंगे.
So we have to be not ignorant of Satan's schemes.
तो हमें शैतान की जो चलाकियां हैं उससे अज्ञान नहीं रहना
चाहिए. So the secret of, you know, earlier we were talking about how to love Jesus.
प्रभु यीशु मसीह से किस प्रकार से और अधिक प्रेम कर सकते हैं, उसकी रहस्य के बारे में बात कर रहे थे.
Do you remember the three things I said?
क्या आपको याद है जो तीन बातें मैंने बताया?
One, we love him because he first loved us.
और क्योंकि सबसे पहले उसने हमसे प्रेम किया.
The more you meditate on that, the more you love him.
आप जैसे उसके नजदीक जाएंगे और अधिक आप उससे प्रेम करेंगे.
Second, the one who is forgiven more loves more.
और जिसको ज्यादा क्षमा मिला है वो ज्यादा प्रेम करेगा.
You must think of how much the Lord has forgiven you.
So आपको हमेशा सोचना है कि कितना अधिक, कितना ज्यादा आपको जो है उसने क्षमा किया है.
Thirdly, to love God more, we got to love money less.
और परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करने के लिए आपको जो है धन से कम प्रेम करना पड़ेगा.
The more you move away from the love of money, the closer you'll get to the love of God.
जितना अधिक आप धन के प्रेम से दूर होंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे.
Having money is not wrong.
पैसा रखना गलत काम नहीं है.
Loving money is totally wrong.
लेकिन धन से प्रेम करना वो गलत है.
See, if you have worked hard and you earned money, that's a good thing.
अगर जो आपने बहुत कड़ी मेहनत किया और पैसे कमाया तो ठीक है.
But provided you have learned to be rich towards God, who enabled you to earn all that money.
लेकिन परमेश्वर के प्रति हमें ज्यादा आभारी रहना है, क्योंकि उसने आपको सामर्थ्य दिया है ज्यादा पैसे कमाने के लिए.
Do you know that all the money you have belongs to God?
क्या आप जानते हैं कि जितना भी धन दौलत आपके पास है वो सब परमेश्वर का है?
I'll show you that from scripture.
और मैं वचन में से दिखाना चाहूंगा.
डोंट बिलीव एनीथिंग आई से इफ आई कांट शो इट यू फ्रॉम स्क्रिप्चर.
अगर जो मैं वचन में से कोई भी चीज नहीं दिखाता हूं तो उस बात पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं.
1 Corinthians chapter 10.
पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय.
एंड वर्स 26.
उसका 26.
1 Corinthians 10:26.
पहला कुरिन्थियों 10 उसका 26.
द अर्थ बिलोंग्स टू द लॉर्ड. And everything that is on this earth also belongs to the Lord.
क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है.
The fullness of the earth means everything on this earth.
यानी कि पृथ्वी पर जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर का है.
All the trees.
जितने पेड़ पौधे हैं.
All the gold and silver hidden underground.
जितना जो सोना चांदी जो जमीन के नीचे है.
All the money in all the banks in the world.
और बैंक के अंदर, खातों के अंदर जितने भी धन दौलत है.
It all belongs to the Lord. There's nothing on earth that belongs to any man.
ये सब कुछ परमेश्वर का है, इंसान का कुछ भी नहीं.
It's a clear verse. Everything on earth belongs to the Lord.
और बोलते हैं कि ये सब कुछ जो भी पृथ्वी पर है उसकी भरपूरी सब कुछ परमेश्वर की है.
See, people ask me, supposing I find some currency note on the road, what should I do with it?
अगर जो कोई नोट मेरे को सड़क पे मिलता है तो मेरे को क्या करना है?
I mean, you look around and see if somebody's dropped it. Wait for a little while. If somebody's dropped it, they'll come and pick it up.
और किसी ने उसको गिराया है क्या, या फिर वो ढूंढते हुए कोई आ रहे हैं?
But otherwise, pick it up and put it in the offering box, because everything on earth belongs to the Lord.
और अगर नहीं तो उठाकर ऑफरिंग के बक्से में डाल दो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है.
एंड रिमेंबर ऑल्सो दैट व्हाट यू अर्न फ्रॉम योर जॉब बिलोंग्स टू द लॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल.
और सबसे पहले याद रखें कि जो आपने कमाई की है वो भी परमेश्वर का है सबसे पहले.
इन द ओल्ड टेस्टामेंट दे डिड नॉट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग.
और पुराने नियम में इसकी समझ नहीं था.
सो गॉड सेड यू गिव 10% एज इंडिकेटिंग योर ग्रैटिट्यूड टू गॉड फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर यू.
और पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि दसवांश यानी कि दसवां हिस्सा जो है परमेश्वर को चढ़ाएं, ताकि हम परमेश्वर के प्रति आभारी रहें जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया है.
इन द ओल्ड टेस्टामेंट टेंथ टाइथ वाज नॉट मनी.
और पुराने नियम में दशवांश जो है वो पैसा नहीं था.
इट वाज ग्रेन.
वो अनाज था.
और कैटल
या फिर जानवर.
दैट मींस गॉड ब्लेस देयर फार्म और देयर फ्लॉक्स and 10% of that they gave to show their gratitude to God.
और अनाज में परमेश्वर ने आशीष दिया, पशुओं में परमेश्वर ने आशीष दिया, इसलिए उसका दशवांश जो है लेकर आते हैं परमेश्वर के प्रति आभारी प्रकट करने के लिए.
Because out of the 12 tribes, one tribe was told not to do any earthly work.
क्योंकि 12 गोत्रों में से एक गोत्र को परमेश्वर ने कहा कि कोई भी सांसारिक कार्य ना करे.
You must not have any fields.
उनका कोई खुद का खेत नहीं होना चाहिए.
You must not even have a house.
और खुद का घर भी नहीं होना चाहिए.
You must not have any flocks.
और कोई जानवर नहीं होना चाहिए.
Those are the Levites.
और वो है लेवी गोत्र.
They had to spend all of their time serving God in the temple.
क्योंकि वो अपना सारा समय जो है मंदिर की सेवा, आराधनालय की सेवा टहल करने के लिए बैठते थे.
So then how will they live?
तो फिर वो कैसे अपनी गुजारा करेंगे?
So the other 11 tribes were told.
तो बाकी के जो 11 गोत्र के लोग हैं,
व्हाट यू अर्न फ्रॉम योर फ्लॉक एंड योर फील्ड्स ब्रिंग 10% एंड गिव इट टू द लेवाइट्स.
जो आपके अनाज हो या जानवर हो उसमें से दसवां हिस्सा लाकर उनको देना है ताकि वो अपना गुजारा कर सके.
सो इफ 11 ट्राइब्स ब्रॉट 10% दैट वाज मोर देन 100% The Levites would get a share also.
तो जो बाकी के 11 गोत्र जो है 10-10% करके लेकर आएंगे, यानी कि उनको लेवी लोगों को 100% से ज्यादा मिलता है.
And that was like today the government charges income tax.
जैसे कि आज के युग में हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स होता है वैसे ही.
In Israel, God was the head of the government.
और इज़राइल में जो है परमेश्वर मुखिया होता था उस देश का.
And the Levites were like the government servants.
और जो लेवी लोग हैं वो सरकारी नौकरों की तरह होता था.
Today the government servants are paid from the income tax that you pay to the government.
और जितना भी कर दिया जाता है उसमें से उन लोगों को जो है जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं उनको पगार मिलता है.
God said you pay 10% income tax.
तो परमेश्वर ने कहा कि 10% जो है कर दो.
And like that the Levites, the government servants were taken care of.
और इसी प्रकार से लेवी लोगों का देखभाल होता था.
But in the new covenant,
लेकिन नए वाचा में,
God is not the head of the government.
परमेश्वर जो है सरकार का मुखिया नहीं है.
He has become our father.
वो हमारा पिता बन गया है.
Do you pay income tax in your house to your father?
क्या आप अपने घर में अपने पिता को कोई जो है कर देता है?
No.
नहीं.
So that is why we don't believe in paying 10% to our father.
इसलिए हम 10% देने में विश्वास नहीं करते अपने पिता को.
Supposing you are a working son or daughter in your home and you're not yet married.
और मान लीजिए कि आप जो है घर में कामकाज करने वाले पुत्र या पुत्री हो और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई.
And your father is poor and he's living with you.
और आपके पिताजी गरीब हैं, वो आपके साथ रहते हैं.
Won't you take care of his needs?
क्या आप उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे?
Not out of any law.
कानून के अंतर्गत नहीं.
Out of gratitude.
आभारीपन से देंगे.
If your parents are poor,
अगर जो आपके माता पिता गरीब हैं,
give them out of gratitude.
तो हम आभारी होने के कारण उनके प्रति आभारी प्रकट करने के लिए देंगे.
Even if your parents are rich,
हाँ, अगर आपके माता पिता अमीर होंगे तो भी,
you may still take them a gift out of gratitude.
फिर भी आप उनको तोहफा देना चाहेंगे आभारीपन से.
So God is not poor, he is not a beggar.
परमेश्वर जो है गरीब नहीं, वो भिखारी नहीं.
He is the biggest, richest person in the universe.
और वो पूरे विश्व में सबसे धनाढ्य व्यक्ति है.
You know all these people who preach that God's work is suffering, please support God's work.
जो लोग प्रचार करते हैं कि परमेश्वर के जो सेवकाई है उसमें दो,
they are picturing God like a beggar.
और वो इस तरीके से तस्वीर दिखाते हैं जैसे कि परमेश्वर कोई भिखारी है.
Fool believers to go and give money to them.
और वो लोगों को बेवकूफ करते हैं कि वो परमेश्वर को देने के लिए.
Almost every church
اور ہر کلیسیا
proclaims like that.
اور ایسے ہی بولتے ہیں
we need money, give money, give money, give money.
ہمیں پیسے کی ضرورت ہے, پیسے دو, پیسے دو.
You know who never said that? Who is the one who never said that?
کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نے ایسا نہیں کہا ہے کبھی؟
Jesus.
کبھی یشو مسیح نے.
And the apostles.
اور اس کے چیلوں نے.
You never read in the gospel anywhere in the New Testament they're saying give me money.
اور سوسماچار میں کہیں پہ بھی آپ نہیں پڑھو گے کہ دو دو کر کے لکھا ہے.
Jesus said give money to the poor.
پربھو یشو مسیح نے کہا غریبوں کو پیسے دو.
That he said many times.
اور وہ اس نے کئی بار کہا ہے.
Paul wrote to the Corinthians, give money to the poor believers in Jerusalem.
اور پولس نے کورنتھیوں کو بھی کہا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو پیسے دو.
But never do you read in the New Testament, give me money, I am serving the Lord.
اور کہیں پہ بھی نئے نیم میں یہ نہیں لکھا کہ مجھے پیسے دو کیونکہ میں پرمیشور کی سیوکائی کرتا ہوں.
Or give money to these preachers.
یا فلانے پرچارک کو پیسے دو.
Not even once.
ایک بار بھی نہیں.
Then we can ask.
تو ہم پوچھ سکتے ہیں
how are these preachers supposed to live?
تو یہ پرچارک کس پرکار سے جیون جیئیں گے؟
Aren't these preachers like the Levites in the Old Testament?
کیا یہ لیوی گوتر کے سمان نہیں ہیں یہ پرچارک لوگ؟
No.
نہیں.
Because one of the greatest preachers, the apostle Paul, worked with his own hands.
کیونکہ جو سب سے بڑا پرچارک تھا پولوس, اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا.
The Levites were not allowed to work.
اور لیوی لوگوں کو انومتی نہیں تھا کام کرنے کا.
Paul worked.
لیکن پولوس نے کام کیا.
And many servants of the Lord through these 20 centuries have worked and served the Lord.
اور اس 20ویں شتابدی میں بھی بہت سارے پرمیشور کے سیوک لوگ کاریہ کر کے وہ پرمیشور کی سیوا کرتے ہیں.
That's how I have served the Lord for the last more than 40 years that we've had CFC.
اور 40 سال سے پہلے سے ہی جو ہے ہم لوگ پرمیشور کی سیوکائی کرتے ہیں CFC میں.
Not only me, all the other elders.
نہ کیول میں, اور بھی بزرگ لوگ.
We followed Paul's example.
اور ہم پولس کا ادھارن دیتے ہیں.
So it's very important in this area of money that we have a good testimony.
اور اس لیے پیسے کے جو معاملے میں ہمارا اچھا گواہی ہونا چاہیے.
But we read that some people gave money to Jesus.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پربھو یشو مسیح کو پیسے دیا.
How did Jesus support himself?
پربھو یشو مسیح کیسے اپنی مدد خود کرتے تھے؟
Luke 8 verse 2 and 3.
Luke 8 اس کا دوسرا
verse 3.
لوکا رچیت سوسماچار 8 اس کا تیسرا.
جوانا دی وائف اف کوزا, ہیرڈ سٹیورڈ اینڈ سوزانا اینڈ مینی ادرز ور کنٹریبیوٹنگ ٹو دی سپورٹ اف جیزس اینڈ ہز ڈیسائپلز فرام دیئر پرائیویٹ مینز. لوک 8 ورس 3
یہاں لکھا ہے, اور ہیرودس کی بھنڈاری کھوجا کی پتنی یوان اور سوسانا اور بہت سی استریاں یہ تو اپنی سمپتی سے اس کی سیوا کرتی تھی.
He never asked them.
انہوں نے کبھی مانگا نہیں.
If they voluntarily gave, he took it.
ہاں, اگر جو انہوں نے دیا اپنے من سے تو انہوں نے لیا.
Same way Paul says in Philippians.
ویسے ہی پولوس جو ہے فلپینس میں کہتا ہے.
And chapter 4.
اور چوتھا ادھیائے میں.
And verse 10.
4 اس کے 10 میں.
I rejoiced in the Lord greatly that you have revived your concern for me.
میں پربھو میں بہت آنندت ہوں کہ اتنے دنوں کے بعد تمہارا وچار میرے وشے میں پھر جاگرت ہوا.
Not because I want anything, verse 11, because I've learned to be content in whatever I have.
اور 11 میں لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ میں اپنی گٹی کے کارن یہ کہتا ہوں, کیونکہ میں نے یہ سیکھ لیا کہ جس دشا میں ہوں اسی سے سنتوش کروں.
It is in this context of money that he says in verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me.
اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو مجھے سامر دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں.
I'm not dependent on your supporting me, even if you don't support me, the Lord will strengthen me.
اور میں تمہارے جو سہایتا ہے اس پر نربھر نہیں ہوں, پرمیشور میری مدد کرتا ہے.
But you have done well to help me in my need.
لیکن تم نے اچھا کیا, میری ضرورت کے سمے تم نے میری مدد کی.
And now,
اور اب
verse 17,
17 میں دیکھتے ہیں.
I do not seek the gift but the profit which will increase to your account.
یہ نہیں کہ میں دان چاہتا ہوں, پرنتو میں ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے لابھ کے لیے بڑھتا جائے.
He says, I don't need anything.
مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں.
But when you give me something, I think of the blessing that will come to you.
لیکن جب تم میرے لیے کچھ کرتے ہو اس کے پھل سوروپ تمہارے جیون میں بھی کچھ لابھ ہونا چاہیے.
Paul never made his need known to anyone.
پولوس نے اپنی ضرورت کو کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں کہا.
Do you know sometimes Paul was hungry?
کیا آپ جانتے ہیں کئی بار پولوس بھوکا رہا.
And sometimes he was shivering in the cold.
اور ٹھنڈ کے مارے وہ کانپا.
But he never told anybody his need.
Lekin usne apni zarurat kisi ko nahi bataya.
That is the testimony we have maintained in all of our churches.
Aur hamari kalisiya mein bhi humne yahi gawahi bana ke rakha hai.
It's a very important testimony.
Aur ye bahut hi pramukh
baat hai. Because there are two masters, God and money.
Kyunki do swami hain, ek hai parmeshwar aur dusra hai paisa.
We never want to become a slave of money.
Aur hum nahi chahte hum paise ka gulam bane.
We don't want to push people to give money.
Aur hum logon ko dabav nahi dalna chahte paise ke liye.
If you come to our CFC Bangalore,
agar jo aap Bangalore CFC mein aate hain,
on top of the offering box we have 5 conditions written there.
Aur offering box ke upar 5 sharte rakhe hain.
Before you put money in this box,
aur is box mein paisa dalne se pehle,
check these things.
Aur is baat par dhyan de.
Number 1,
pehla,
are you born again?
Kya aapne udhar paya hai?
A person who is not born again cannot give money for God's work.
Agar jo aapne udhar nahi paya hai to isme bakse mein paise nahi dal sakte.
See this verse in the third epistle of John.
Aur teesri patri Yohana ki teesri patri mein hum dekhte
hain. John wrote 3 letters.
Kyunki Yohana ne 3 patri likhi hai.
This is the third letter.
Aur ye teesri patri hai.
There's only one chapter there.
Keval ek hi adhyay hai.
And it says here, the people who went out preaching in the name of Jesus, verse 7, took nothing from the non-Christians.
और वहाँ पे लिखे हैं कि वो जो लोग प्रचार करने के लिए गए थे, उन्होंने अन्य जातियों से कुछ नहीं लिया.
That means if a non-Christian gave them some money, they say, no, thank you, we don't want.
अगर जो अन्य जाति कुछ भी देता है, तो वो लोग धन्यवाद हमें नहीं चाहिए करके बोल देते.
It's a great privilege to support God's work, but only His children have that privilege.
और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर की सेवा करना, लेकिन ये सौभाग्य केवल उसी के बच्चों के पास है.
So the first condition there is, are you a child of God?
तो पहला शर्त ये है कि क्या आप परमेश्वर के संतान हो?
Are you born again?
क्या आपने उद्धार पाया है?
If not, put your money back into your pocket. Don't put it here.
नहीं तो आप अपने पैसे को वापस अपने जेब में रखें.
Second.
और दूसरा शर्त.
Are you in debt to somebody?
क्या आप किसी के कर्जदार हो?
Jesus said, "Give to Caesar what is Caesar's, and give to God what is God's."
परमेश्वर ने कहा कि जो सीजर का है वो सीजर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो.
That means if you owe some tax to Caesar, go and pay Caesar. Don't put it in the offering box.
अगर जो कुछ कर है जो कि सीजर को देना है तो परमेश्वर के उस offering box में ना डाले बल्कि उनको सीजर को दे.
If you borrowed money from that person,
अगर जो किसी व्यक्ति से आपने पैसे लिए हो,
and you put money in the box,
और वो पैसे आप box में आके डालते हैं.
It's not your money. That is that person's money.
वो आपका पैसा नहीं, वो उस फलाने व्यक्ति का है.
That person can say, God, how can he give you my money? He should return my debt.
हाँ, तो वो बोलेगा कि अरे परमेश्वर ये मेरे पैसे कैसे आपको दे सकता है? उसने कर्ज नहीं चुकाया.
God doesn't want Caesar's money or anybody else's money.
परमेश्वर को जो है सीजर के पैसे नहीं चाहिए या किसी और के पैसा नहीं चाहिए.
If you are in debt,
अगर जो आप कर्जदार हैं,
don't put money in the offering box.
तो आप ऑफरिंग के बॉक्स में पैसे ना डालें.
Give it to that person.
तो उस व्यक्ति को पहले दे.
I want to clarify something.
ये मैं आपको बताना चाहता हूँ.
To take a loan for a house is not a debt.
अगर जो घर के लिए कोई कर्ज लेता है, लोन लेता है,
you take loan from a bank to build a house.
और घर बनाने के लिए आप लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं बैंक से.
Why is it not a debt?
वो कर्ज क्यों नहीं है?
See, if you take a weighing balance.
अगर जो आप तराजू लेते हैं.
One side is a house.
एक तरफ घर है.
The other is the bank loan.
और दूसरी तरफ कर्ज है.
Equal.
हाँ, तो रन और जो घर है वो दो बराबर हो जाते हैं.
Take a loan to buy a car.
या फिर कार खरीदने के लिए कर्ज लेते
हैं. There's no debt.
तो वहाँ पे रन नहीं है, कर्ज नहीं है.
If you die, the bank will take the house. There's no debt.
क्योंकि अगर जो आप मर जाते हैं तो बैंक कार ले जाएंगे और आपका कर्ज मुक्त हो जाएंगे.
That is no debt.
तो वो कर्ज नहीं है.
If you borrow money from people for some other thing.
लेकिन अगर जो आप लोगों से पैसे कर्ज में लेते हैं किसी और काम के लिए,
you're in debt to that person.
तो आप उनके कर्जदार हैं.
So people ask me, should I give that person or should I give to God?
तो लोग पूछते हैं कि मैं उनको दूं या फिर परमेश्वर को दूं?
But if you give to God, you're giving that person's money.
अगर जो आप परमेश्वर को देते हैं तो आप किसी और व्यक्ति का पैसा उठाकर दे रहे हैं.
God doesn't want other people's money.
और परमेश्वर को दूसरे लोगों की पैसे की जरूरत नहीं.
But people say, but I also owe God money.
वो बोलते हैं कि मेरे को तो परमेश्वर को भी देना है.
नो नो नो, यू डोंट ओ गॉड एनी मनी.
आप जो है परमेश्वर के लिए नहीं रखते कोई भी पैसा.
इफ यू गिव टू गॉड, यू मस्ट गिव जॉयफुली.
अगर जो आप परमेश्वर को कुछ देते हैं तो पूरे खुशी के साथ देना है.
नॉट लाइक अ डेट.
एक कर्जदार होकर नहीं.
सो दैट्स द सेकंड थिंग.
वो दूसरी बात है.
डोंट गिव टू.
अगर जो कर्जदार है तो मत दे.
द थर्ड थिंग जीसस सेड, इफ व्हेन यू कम विद योर ऑफरिंग यू रिमेंबर समबडी हैज गॉट समथिंग अगेंस्ट यू.
हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो तुम कुछ भेंट लेकर आते हो और याद आता है कि किसी के जीवन में तुमने कुछ बुरा किया है,
and he got something against you because you hurt him,
और उसके मन में आपके विरोध में कुछ बातें हैं,
because you hurt him,
क्योंकि आपने जो है उसको चोट पहुंचाया है,
don't put the offering there,
तो बोलते हैं भेंट मत दो,
go to him,
पहले उसके पास जाओ,
settle it,
उसको पहले बराबर
then
करो,
come and put your offering,
फिर आकर भेंट
चढ़ाओ. So that's the third condition.
और ये है तीसरी शर्त.
Has somebody got something against you because you did some harm to him?
किसी के विरोध में आपने कुछ उनको चोट पहुंचाया है?
Don't put your money here.
तो अपना पैसा यहाँ ना डालें.
Settle it with him.
पहले जाके उससे बात करें.
And number four.
फिर चौथी बात.
See, there's a verse in 1 Timothy 5:8.
पहले तिमोथी 5 उसके 8 में लिखा हुआ है.
That if you don't take care of your family, you're worse than an unbeliever.
हाँ, अगर जो तुम अपने परिवार का देखभाल नहीं करते हैं तो हम अन्य जातियों से बुरे हो.
So, if your children are in need,
अगर जो आपके बच्चे कुछ जरूरत में हैं,
they don't have enough food,
उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं,
they don't have proper clothes,
अच्छा वस्त्र नहीं,
or you don't have money to educate them,
और उनको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे नहीं,
take care of them,
तो उनकी देखभाल करें.
I'm not talking about buying a car for each of them. I'm not talking about things.
मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके लिए कार खरीदो.
I'm saying if they have need of food, clothing or education.
मैं बताना चाहता हूँ उनको भोजन की जरूरत हो, वस्त्र की जरूरत हो या फिर पढ़ाई लिखाई की.
Don't put money in the box. Take care of your children.
तो पहले अपने बच्चों की देखभाल करें, उसमें पैसे ना डालें.
Don't let your children grow up and say we could never get proper education because daddy gave his money to God.
तो बच्चे बढ़कर ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें सही तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे पिता ने दे दिया.
We had to wear torn clothes because daddy gave his money to God.
और मुझे फटा हुआ कपड़ा पहनना पड़ता है क्योंकि परमेश्वर के लिए दे दिया मेरे पिताजी ने.
Your children will turn against God.
तो आपके बच्चे जो है वो परमेश्वर के विरोधी हो जाएंगे.
We right there. Take care of your children.
पहले अपने बच्चों की देखभाल करें.
And number five.
और पांचवी बात.
One thing I want to say, take care of your children doesn't mean you pay a dowry for your daughter. That is not a need.
अपने बच्चों की देखभाल की बात ये नहीं कि अपनी बेटी के लिए जो है तुम दहेज दो.
No. God is 100% against dowry.
तो दहेज के विरोधी हमारा परमेश्वर.
You are disobeying God when you give dowry.
जब आप दहेज देते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते.
Let me clarify.
मैं आप बताना चाहता हूँ.
It's right to give your daughter an equal inheritance with your sons.
और ये सही है कि आप अपने पुत्रों के साथ पुत्रियों को भी बराबर का हिस्सा दो.
That is okay.
वो ठीक है.
When you die or whenever you write a will, that's okay.
हाँ, आपके मृत्यु होने के बाद आप जो है इच्छा देते हैं और उनको भी देते हैं हिस्सा.
But not to buy a husband.
लेकिन पतियों को खरीदे नहीं.
Don't buy a husband with dowry.
और पैसे देकर पतियों को ना खरीदे.
That's not going to be a very happy marriage.
तो वो खुशदायक जो है परिवार नहीं होगा.
Fifth condition is.
और पांचवा शर्त.
Don't do business with God.
परमेश्वर के साथ व्यवसाय ना करें.
Don't give thinking that you will get a reward from God.
और ऐसा सोच कर ना दे कि परमेश्वर आपको कुछ और तोहफा देगा.
Give saying, Lord, I don't want anything back. This is for you.
और बोले कि परमेश्वर मुझे कुछ भी वापस नहीं चाहिए, ये आपके लिए.
These are the five conditions.
और ये पांच शर्तें हैं.
So some people come and they see all that and they don't put anything and go away.
और कई लोग उसको आके पढ़ते हैं फिर कुछ नहीं देते और वापस ले जाते हैं.
See, these are like filters. 1, 2, 3, 4, 5 filters.
और ये पांच तरह के फिल्टर्स हैं.
So somebody asked me once.
और किसी ने मुझसे पूछा.
Brother Zach, with all these filters, does anybody put anything in the box at all? Do you get any money?
कि भाई Zach, ये पांचों शर्तें पढ़ने के बाद क्या कोई उसमें डालता है क्या?
I said we have followed this principle for 41 years.
और 41 साल से ये सिद्धांत पर हम टिके हुए हैं.
And if you go to our website,
अगर जो आप हमारी वेबसाइट पे देखेंगे,
you'll see this financial. Our financial policy.
हमारी आर्थिक जो पॉलिसियां हैं वो वहां पर देख सकते
हैं. Everyone in the world also can read it.
और पूरे वर्ल्ड के संसार के लोग भी पढ़ सकते हैं.
We are not looking for money from anywhere in the world.
हम पूरे संसार में किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है पैसे.
Never send a report of our work.
और हम अपने कार्यों के लिए कोई रिपोर्ट नहीं भेजते.
You know, for many years now, we have sent out a weekly message called Word for the Week.
और पूरे हफ्ते का जो कार्य होता है उसका जो संदेश हमने कई महीनों से नहीं भेजा.
No, we have sent a message from the word of God.
परमेश्वर के वचन के अनुसार.
For many years.
कई सालों से.
And there are thousands of people around the world who get it.
और बहुत सारे सैकड़ों लोगों को वो संदेश मिलता है.
We never send a report to all of them of what we are doing.
लेकिन हम क्या काम करते हैं उसके बारे में हम रिपोर्ट नहीं देते.
Because Jesus never gave a report to people of what he was doing.
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद वो क्या करता है करके रिपोर्ट किसी को नहीं दिया.
The apostles never sent reports to all the churches what they were doing.
और प्रेरितों ने भी कभी वो क्या काम करते हैं उसके बारे में रिपोर्ट नहीं भेजा.
Among the apostles and elders they shared among themselves what
और प्रेरितों ने आपस में और बुजुर्गों ने आपस में इस बात को बांटा था.
We share among the elders what the Lord is doing.
और हम अपने बुजुर्गों के बीच में बांटते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है.
We don't advertise it because advertising makes like asking people for money.
लेकिन हम एडवर्टाइज नहीं करते क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि हम पैसे मांग रहे लोगों से.
We are a unique church like that.
हम बिल्कुल एक अलग चर्च हैं.
41 years in all our nearly 75 churches we have never taken an offering in any
church. और 40 साल से जो है 75 कलीसिया में कहीं पे भी हमने भेंट नहीं लिया.
None of our elders get any payment.
और हमारे बुजुर्गों को किसी को भी पेमेंट भी नहीं दिया जाता.
God has met all our needs.
और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है.
When we put up a building we don't go to a bank for money.
और जब हम कोई इमारत खड़ी करते हैं तो हम बैंक में रन के लिए नहीं जाते.
Because in many of our village churches we have to put up a building because the all those Hindus and all will not give us their houses to have a church meeting.
और कई बार गांव में हमें खुद का बिल्डिंग बनाना पड़ता है क्योंकि हिंदू लोग जो है हमें अपना घर नहीं देते हैं.
So we have to put up a building.
तो हमें वहाँ पे बिल्डिंग बनाना
पड़ता है. We never ask people for money.
लेकिन हम लोगों से नहीं मांगते.
Where we get, we build. If we don't have, we don't build.
जहाँ पे हमें मिलता है वहाँ पे हम बना लेते हैं, नहीं मिलता है नहीं बनाते हैं.
I'm saying we need to know these principles that if we want to build a New Testament church, we depend only upon God.
और ये नई वाचा का एक कलीसिया बनाना है तो हमें उस पर परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ेगा.
We're not proud of it.
और इसके लिए हम गर्व नहीं महसूस करते.
God is a good God. That is what we are trying to proclaim.
और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है.
God's ways are not man's ways.
और परमेश्वर के जो मार्ग है वो इंसान के मार्ग नहीं.
See Isaiah 55.
यशायाह नबी की किताब 55वां अध्याय.
Now many people listen to these ways we do our God's work and they can't understand why we do it like this.
और कई लोग इस बातों को सुनते हैं और वो समझ नहीं पाते कि हम ऐसा क्यों करते हैं.
I say because we follow Jesus.
और मैं कहता हूँ कि क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं.
I told you if you compare yourself with somebody better than you, you'll always remain humble.
मैंने जैसे कि बताया कि अगर जो आप अपनी तुलना किसी आपसे भी बेहतरीन लोगों से करते हैं तो आप हमेशा नम्र बने रहेंगे.
So we don't compare ourselves with other churches.
इसलिए हम अपनी तुलना किसी और कलीसिया से नहीं करते.
We don't say we are better than other churches.
हम ये नहीं कहते कि हम दूसरों से बेहतरीन हैं.
If we get 10%, we don't look at other people who get 5% and 4%.
अगर जो हमें 10% मिलता है तो हम उनको नहीं देखते जिनको 5 और 4% मिला है.
We look at the one who got 100%, Jesus Christ.
हम उसकी ओर देखते हैं जिसको 100% मिला है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह.
We don't look at other Christians or other churches.
हम दूसरी कलीसियाएं या दूसरी को किसी विश्वास को नहीं देखते हैं.
We do things differently.
हम बिल्कुल अलग करते हैं.
Because we follow Jesus.
क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं.
We still have not become like him. We want to be more like him.
लेकिन आज तक हम उसके समान नहीं बने हैं, लेकिन हम उसके समान बनना चाहते हैं.
We want to be like him in our attitude to money.
और हम उसके साथ अनुसार बनना चाहते हैं पैसे के आर्थिक तौर से उसके मनोभाव में.
We want to be like him in the way we speak.
और जैसे हम बोलचाल करते हैं वैसा हम उसके समान बनना चाहते हैं.
In the way we handle money.
और जैसे हम पैसे को संभालते हैं उसमें.
In the way we look at women.
और स्त्रियों को जिस प्रकार से हम देखते हैं.
With purity, just like Jesus looked at them.
और पवित्रता के साथ जैसे प्रभु यीशु मसीह ने देखा.
In the way we look at Pharisees.
और जैसे फरीसियों को देखते हैं.
Denouncing Pharisees, just like Jesus did.
जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा वैसे ही हम भी उनको डांटते हैं.
In the way we look at sinful women or men with compassion, saying God forgives you.
और वैसे ही अगर जो कोई पाप में है कोई पुरुष या स्त्री उनको दया के साथ देखते हैं, जैसे जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने
देखा. We want to have the same attitude Jesus had towards people, towards things, towards everything.
और हम भी वैसा ही मनोभाव रखना चाहते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह का था मनुष्यों के प्रति और समान के प्रति.
That requires a big change in our way of thinking.
और उसके लिए हमारे सोच विचार में बहुत बड़ा एक बदलावट होना चाहिए.
See this verse, Isaiah 55, verse 8 and 9.
यशायाह नबी की किताब 55 उसका 8 और 9 देखेंगे.
My thoughts are not your thoughts.
मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं.
Neither are your ways my ways, says the Lord.
और परमेश्वर कहते हैं कि मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं.
And we say, Lord, what is the difference between your ways and my ways? Our ways and your ways?
हाँ तुम्हारे विचार और मेरे विचार में क्या फर्क है, हम पूछेंगे ऐसा।
The Lord says in verse 9, as high as the heaven is above the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.
नो में वो जवाब देता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है।
So when many Christians hear about the way how we handle money in our church,
हाँ जो यहाँ पे विश्वासी लोग बैठे हैं वो किस प्रकार से जो है पैसे का इस्तेमाल करते हैं,
और हाउ वी हैंडल मनी और पॉलिसी ऑन मनी,
या पॉलिसीज जो पैसे के ऊपर उन्होंने बनाया है,
एंड दे से हे दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन अदर चर्चेस,
और ये तो बिल्कुल भिन्न है दूसरे कलीसियाओं से,
बिकॉज़ इन एवरी चर्च दे आर ऑलवेज आस्किंग अस टू गिव मनी,
और दूसरे कलीसियाओं में हमेशा पैसा मांगते हैं,
बट योर्स इज डिफरेंट, यू डोंट नेवर आस्क फॉर इट,
बिल्कुल अलग है।
Is it because you got a lot of millionaires in your church?
क्या इसलिए क्योंकि आपके चर्च में सब जो है धनाढ्य व्यक्ति हैं?
We've got poor people in our church.
हमारी कलीसिया में गरीब लोग भी हैं.
But we got a rich heavenly father.
लेकिन हमारा पिता जो है वो अमीर है.
And we tell him our need.
और हम उसको अपनी जरूरतें बताते हैं.
And his thoughts are different from the thoughts of most Christians.
और उसके जो विचार हैं वो सारे जितने मसीह लोग हैं उनके विचार से अलग है.
So we don't do it like other Christians do. We do it the way Jesus did it.
हम जैसे दूसरे मसीह लोग करते हैं वैसा नहीं, लेकिन जैसा परमेश्वर करता है वैसे करते हैं।
I never see Jesus telling anybody his financial need.
और मैंने कभी नहीं सुना प्रभु यीशु मसीह को जो है अपनी आर्थिक स्थितियों के बारे में बताते हुए,
any earthly need.
या फिर जो सांसारिक जरूरतें उसके बारे में बताते हुए।
I never hear Jesus complaining about,
और मैंने कभी प्रभु यीशु मसीह को किसी बात पर शिकायत करते हुए नहीं सुना।
We must make our ways like His ways.
इसलिए हमें हमारा जो विचार है, हमारी जो गति है, वो परमेश्वर के गति के समान बनाना है।
So much higher than earth, the other people.
और वो दूसरे लोगों से बहुत ऊंचा है।
And that is the only type of church I want to be in.
और उस वैसा ही कलीसिया में मैं रहना चाहता हूँ।
I never want to be a part of a church where they are interested in money.
और मैं उस कलीसिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता जहां पे लोगों के अंदर पैसे के प्रति इच्छा हो।
Closer you get to money, the further away you are from God.
क्योंकि आप जितने पैसे के करीब जाते हैं उतने परमेश्वर से दूर होते हैं।
The more you talk about money, the more you drift away from God.
आप जितने पैसे के बारे में बात करेंगे उतना परमेश्वर से दूर होते रहेंगे।
That is why I will never sit in a church that's always talking about money.
इसलिए उस कलीसिया में नहीं बैठना पसंद करता जहां पे पैसे के बारे में बातें होती हैं।
Where they talk about God.
जहां पे वो परमेश्वर के बारे में बात करते
हैं।
और प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की कोशिश करते हैं।
This is a very important principle.
और ये बहुत प्रमुख एक सिद्धांत है।
There are people who wonder why are we not growing spiritually?
और कई बार लोग आश्चर्यचकित महसूस करते हैं कि हम क्यों नहीं बढ़ रहे?
Because you are sitting in a church which is more interested in your money than making you like Jesus Christ.
वो इसलिए क्योंकि वो ऐसे कलीसिया में बैठे हैं जहां पे पैसे को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है।
It's like saying why are my children getting 10% in mathematics?
वो इस प्रकार से है, मेरे बच्चे को क्यों केवल 10% अंक मिलता है मैथ्स में, गणित में?
Because you put them in some corporation school where the teacher never comes.
और क्योंकि आपने ऐसे corporation school में भेजा, सरकारी स्कूल में भेजा जहाँ पे कभी अध्यापक आता ही नहीं।
Why do you put your children in good schools?
और आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में क्यों नहीं भेजते?
Because you want them to get a good education.
क्योंकि आप चाहते हैं कि उनको अच्छा पढ़ाई लिखाई मिले।
If somebody is sick, why do you put them in a good hospital?
अगर जो कोई बीमार होते हैं तो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में क्यों दाखिल करते हैं?
We choose a good school.
आप अच्छे स्कूल को चुनते हैं।
We choose a good hospital.
अच्छा अस्पताल को चुनते हैं।
We choose not a good church.
लेकिन हम अच्छे कलीसिया को नहीं ढूंढते।
They say my father used to go to this church.
फिर हम बोलते हैं कि मेरे पिताजी फलाने चर्च में जाते थे।
Grandfather also.
मेरे दादाजी भी।
Do you send your child to the same school your grandfather went to?
क्या आप अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजेंगे जहाँ पे आपके दादाजी ने पढ़ाई किया?
If your mother is sick, do you send them to the hospital your grandmother was taken to?
क्या आपके बच्चे बीमार होते हैं तो आपकी दादी जिस अस्पताल में दाखिल होती उसमें भेजेंगे?
There are better schools today, better hospitals today.
उससे बेहतर स्कूल और उससे बेहतर अस्पताल है।
And there are better churches.
और बेहतरीन कलीसिया भी है।
But why are we careful about hospital and school?
लेकिन हम जो है ज्यादा ध्यान स्कूल और हॉस्पिटल में क्यों देते हैं?
But not about church.
लेकिन कलीसिया के बारे में नहीं।
Listen to the truth.
ध्यान दीजिएगा इस सच्चाई की ओर।
You value good education.
क्योंकि आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ज्यादा महत्व देते हैं.
यू वैल्यू गुड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर योर लव्ड वंस.
क्योंकि आप जिसे प्रेम करते हैं उनके प्रति अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई वगैरह मिलने के लिए आप मूल्य देते हैं.
बट यू डोंट वैल्यू ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड व्हेन यू गो टू अ चर्च.
लेकिन कलीसिया में जाते हैं तो परमेश्वर के वचन को ज्यादा मूल्य नहीं देते.
दैट्स व्हाई यू डोंट चेक इज दिस चर्च ओबेइंग गॉड्स वर्ड.
इसलिए आप वहां पे चेक नहीं करते, ध्यान नहीं देते कि ये क्या वचन को मानते हैं या नहीं.
यू गो टू हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग इज डर्टी एंड यू से नो आई डोंट वांट टू पुट माय लव्ड वन इन दिस हॉस्पिटल.
अगर जो आप अस्पताल में जाते हैं और हॉस्पिटल का हालत बहुत बेकार है तो आप वहां पे अपने प्रियजनों को दाखिल नहीं देंगे.
दैट्स द रीजन मेनी पीपल डोंट ग्रो.
और इस यही कारण है कि बहुत सारे लोग बढ़ते नहीं है.
We have to learn to think the way God thinks.
इसलिए हमें उस तरीके से सोचना है जैसे परमेश्वर सोचता है.
That's why he's given us the Holy Spirit.
इसलिए उसने पवित्र आत्मा को दिया है.
The Holy Spirit changes our way of thinking.
और पवित्र आत्मा हमारे सोच विचार के ढंग को बदलता है.
God has been changing my way of thinking for more than 50 years.
और पिछले 50 साल से परमेश्वर मेरे सोच विचार के ढंग को बदलता आ रहा है.
To learn to think the way Jesus thinks.
ताकि मैं जैसे प्रभु यीशु मसीह सोचता है उसी प्रकार से सोचने लगूं.
To love like Jesus.
ताकि प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रेम करूं.
To be firm like Jesus.
और एकदम प्रभु यीशु मसीह के समान दृढ़ बनूं.
To say to sinners, I don't condemn you. God forgives you.
और पापी व्यक्ति को देखकर मैं बोलूं कि मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता हूं लेकिन परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है.
And when people make money in the name of religion to take a whip and chase them out of the church.
और धर्म के नाम पे अगर जो कोई इंसान पैसा मनाता है तो वहां पे जो है बेद बनाकर उनको बाहर निकालूं मारकर.
That is Jesus.
और यही प्रभु यीशु मसीह है.
Who had grace and truth.
जिसके अंदर अनुग्रह भी है और सच्चाई भी है.
Was loving and strict.
और जो कि एकदम प्रेम करने वाला है और कठोर भी है.
God's ways are not our ways.
हमारा मार्ग नहीं परमेश्वर का मार्ग.
He doesn't work the way we think it should be done.
और जैसे हम सोचते हैं वैसा वो काम नहीं करता है.
For example,
उदाहरण के तौर पे,
you know, we thought about I can do all things through Christ who strengthens me.
जैसे कि हमने सोचा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है.
But before He can give us that strength.
और वो हमें सामर्थ्य उससे पहले.
He has to make us weak.
वो हमें कमजोर बनाएगा.
Many of us don't understand why is God taking us through so many trials.
और कई लोग नहीं समझ पाते कि वो हमें जो है बहुत सारी परीक्षाओं से क्यों लेकर जा रहा है.
He is taking us through trials to make us weak.
और वो हमें इसलिए परीक्षाओं से लेकर जा रहा है ताकि हम कमजोर हो जाएं.
Then only His power can come inside you.
क्योंकि वो नहीं चाहता कि क्या कहते हैं उसका जो ताकत है वो हमारे अंदर आए.
See when people say Oh brother, I lose my temper so easily.
अगर जो कोई कोई बोलते हैं कि मैं अपने ऊपर जो काबू है काबू होना पन उसको मैं जल्दी खो बैठता हूँ, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ.
I get angry so quickly because I'm so weak.
मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं जल्दी क्रोधित हो जाता हूँ.
Tell me honestly.
ईमानदारी से कहिएगा.
Are weak people get angry or strong people get angry?
कि कमजोर व्यक्ति जो है जल्दी गुस्सा होता है या फिर ताकतवर इंसान जल्दी गुस्से में आता है?
See, you take an angry man who's admitted in a hospital.
हाँ, ऐसे व्यक्ति को देखे जो कि जल्दी क्रोधित होता है वो हॉस्पिटल में है.
And first day is yelling at the nurses and angry with everything.
और पहले जो है वो नर्सेस के ऊपर हर एक के ऊपर चिल्लाता है.
You see him after a week.
एक हफ्ते के बाद.
He has become a little weaker.
और कमजोर हो जाता है.
And he doesn't have much strength to shout at the nurses now.
और अब उसके अंदर इतना ताकत नहीं कि वो नर्सों के ऊपर चिल्लाए.
And one more week.
एक और हफ्ता बीतने दो.
He's become very weak now.
बहुत कमजोर हो गया है.
Now he doesn't get angry at all.
अब वो बिल्कुल क्रोधित नहीं होगा.
When was he getting angry?
कहाँ से वो गुस्सा हो रहा था?
When he was strong.
जब वो मजबूत था, ताकतवर था.
So don't say I'm so weak, brother. I get angry so easily.
इसलिए ऐसा ना कहें कि मैं बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं जल्दी क्रोधित हो
जाता हूँ. That's a lie.
वो झूठ है.
Say, brother, I'm so strong. I'm angry.
ओ, ऐसे बोलना चाहिए कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, इसलिए मैं जल्दी गुस्से में आ जाता
हूँ. God has to make you weak.
परमेश्वर आपको जो है कमजोर बनाना है.
Then only he can manifest his power in you.
तभी वो अपने सामर्थ को आपके अंदर प्रकट कर सकता है.
And I'll show you many examples of that.
और मैं बहुत सारे उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ.
Jesus once heard that Lazarus, his friend, was sick.
और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार सुना कि लाजर उसका प्रिय दोस्त जो है वो बीमार है.
Very close friend.
बहुत नजदीकी दोस्त.
Supposing you hear that your close relative is seriously sick.
अगर जो आपको ये समाचार मिले कि आपका कोई नजदीकी रिश्तेदार बीमार है.
What do you do?
तो आप क्या करेंगे?
You'll get a ticket immediately and go.
तो उसी समय आप टिकट लेके उसके पास जाएंगे.
Listen to this.
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा.
John 11 verse 6.
योहन्ना 11 उसका 6.
When Jesus heard that Lazarus was sick, he stayed two more days in the same place.
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब यीशु ने सुना कि वह बीमार है, यानी कि लाजर बीमार है, जो जिस स्थान पर वह था वहां दो दिन और ठहर गया.
It's like you're hearing, my mother is seriously sick. I think I'll wait here two more days.
इसका अर्थ यह है कि मेरी माता बीमार है, लेकिन वो वहां पे दो दिन और रुक गया.
Is this God's way? Is this man's way? No.
क्या ये परमेश्वर के मार्ग हैं या इंसान के मार्ग हैं? नहीं.
Jesus waited.
प्रभु यीशु मसीह वहीं पे ठहरा रहा.
And I think he stayed more than two days.
और मुझे लगता है कि वो दो दिन से ज्यादा रहा.
Because
क्योंकि
by the time he reached Lazarus's place,
जब तक वो लाजर के जगह में पहुंचता,
he was already dead for 4 days.
क्योंकि वो मरकर 4 दिन बीत चुके थे.
They said, "Don't open the tomb. He's dead for 4 days."
और बोलते हैं कि वो 4 दिन से मर चुका है, इसलिए उसके कब्रिस्तान को ना खोले.
He heard the message when he was sick.
जब वो बीमार था तो उसको संदेश मिला था.
But he went only after he was dead for 4 days.
और लेकिन वो वहाँ पर 4 दिन के मर के 4 दिन होने के बाद पहुँचा.
What is the spiritual lesson there?
और यहाँ पे आत्मिक अध्याय क्या है?
Lazarus has to die.
यानी कि लाजर को मरना जरूरी है.
There is a spiritual lesson here.
यहाँ पे आत्मिक हमें शिक्षा मिलती है.
God can manifest His power in you only after you die.
और परमेश्वर अपना सामर्थ्य तभी प्रकट कर सकता है आत्मिक तौर से जब वो आप आत्मिक तौर से मरते हैं.
Jesus waits.
प्रभु यीशु मसीह ने इंतजार किया.
Lazarus can still move around, so I have to wait.
तो अभी भी लाजर हिल डुल सकता है, इसलिए मुझे इंतजार करना है.
He can still lift his hand and all, I have to wait.
हाँ, वो अभी भी अपना हाथ उठा सकता है, इसलिए मुझे इंतजार करना है.
Now he is dead.
अब वो मर चुका है.
Just to make sure he's dead, let's wait another 4 days.
अब वो पक्का करना है कि वो मर चुका है कि नहीं, इसलिए 4 दिन और इंतजार करेंगे.
Maybe only a coma, don't know.
हो सकता है कि कोमा में हो.
4 days means he's really dead.
हाँ, 4 दिन बीत गए मतलब कि वो असलियत में मर चुका है.
Inside the grave, buried, definitely dead.
अब तो वो उसका दफना चुके हैं. हाँ हाँ, वो तो मर चुका
है.
Now
I can go and manifest my power.
अब मैं जाकर अपने सामर्थ्य को प्रकट कर सकता हूँ.
Spiritual lesson here.
यहाँ पे आत्मिक शिक्षा क्या है?
For you and me.
मेरे लिए और आपके लिए.
As long as we think I can do something for the Lord.
जब तक हमें ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकता हूँ.
Jesus has to wait.
तो प्रभु यीशु मसीह को इंतजार करना पड़ेगा.
He is still very confident in himself.
क्योंकि वो अभी भी अपने ऊपर भरोसा रखता है.
He thinks he can get victory over sin just by a little more determination.
हाँ, थोड़ा और ताकत इस्तेमाल करूं तो मैं जीत सकता हूँ शैतान के ऊपर.
And then next day you are weaker and Jesus said, no, not yet. He's not fully dead yet.
हाँ, अगले दिन थोड़ा और कमजोर होता है तो यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, अभी पूरा तरह से नहीं हुआ.
He had to become weak and completely dead to yourself.
और इसको कमजोर होना है, अपने आप में मरना है.
I have no strength.
और मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं.
You know, in the church we speak a lot about dying to self.
और हम कलीसिया के अंदर अपने आप में मरने के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं.
And that's the meaning of taking up the cross every day.
और यही है अपना क्रूस उठाकर चलना रोज के रोज, उसका अर्थ यही है.
Die to self.
यानी कि अपने आप में मरना.
And a lot of us hear it.
और बहुत सारे हम में से सुनते हैं.
And we think we are dead.
और हमें लगता है कि हम मर चुके हैं.
But we are not really dead.
लेकिन हम असलियत में नहीं मरे.
In the conference in Bangalore, I was telling a story that I heard.
और कॉन्फ्रेंस जो बैंगलोर में हुआ वहां पे मैंने कहानी सुना.
That they were acting a drama of Jesus dying on the cross.
और वो ऐसा ड्रामा कर रहे थे, नाटक कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में.
So there was one man hanging there on the cross.
वो क्रूस पे लटक गया.
And these other fellows were supposed to spit at him and all that.
और दूसरे जो लड़के नीचे खड़े थे उनको थूकना था उसके ऊपर.
Pretend to spit and so on.
हाँ, ऐसे थूकने का नाटक करना है.
But one man really spat it.
उनमें से एक ने जो है असली में उसके ऊपर थूक दिया.
And this man on the cross said, "Wait till I come down from the cross. I'll teach you a lesson."
तो ये जो क्रूस पे लटका हुआ था उसने बोला कि रुक जा, मैं उतर कर आता हूँ, उसके बाद मैं तुझे सिखाता हूँ.
That is how many believers die.
और इसी प्रकार से कई विश्वासी लोग मरते हैं.
They haven't really died.
वो असलियत में नहीं मरे.
They're pretending to hang there. I've died to myself.
वो केवल नाटक करते हैं मरने का.
Somebody provokes them and you discover suddenly that they haven't died.
कोई उनको उत्तेजित करता है तो वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं.
God has to wait until we are really willing to die to ourselves.
Parmeshwar ko utna der tak intezar karna padta hai jab tak hum asli roop mein nahi mar jate.
So many times when somebody comes and tells me, brother, this person has done this to me.
Aur kai baar jab log aake bolte ki is falane vyakti ne aisa kiya hai.
My question is,
mera prashn ye hai,
how will a dead man react to that?
Kis prakar se ek mara hua vyakti uska pratikriya dikha sakta hai?
You act like that.
Aap waise hi dikhaye.
That is the meaning of dying with Jesus.
प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने का अर्थ यही है.
See Romans chapter 6.
रोमियो 6
verse 6.
6 का 6.
Your old man was crucified with Christ.
6 के 6 में लिखा है कि तुम्हारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया.
So what should we do?
तो आप क्या करेंगे?
Verse 11.
11.
Consider yourself to be dead.
ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरे हो.
Consider yourself to be dead.
और ऐसे माने कि तुम पाप के लिए मर चुके हो.
Because God has crucified you on the cross with Christ.
क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको भी क्रूस पर चढ़ा दिया.
So, in the early days when I was trying to understand this,
जब मैं आरंभ में इन बातों को समझने की कोशिश कर रहा था,
I can do all things through Christ who strengthens me. I must die first.
हाँ, मैं परमेश्वर के सामने सब कुछ कर सकता हूँ ये समझने से पहले प्रभु यीशु में मुझे मरना है.
Otherwise, I'm doing it in my own strength and I'll fail.
नहीं तो मैं अपने सामर्थ्य में कर रहा हूँ और मैं असफल हो जाता हूँ.
I want to do all things through Christ who strengthens me, not through my determination.
और मैं सब कुछ परमेश्वर के सामर्थ्य में करना जो मुझे सामर्थ्य देता है, ना कि अपने ठान लेने से.
We saw in the case of Lazarus, Christ will come only after you die fully.
और लाजर की कहानी में देखते हैं कि जब आप पूर्ण तौर से मर जाते हैं केवल तभी प्रभु यीशु मसीह आएगा.
This is the way I used to picture it. This is the way I pictured it.
और इस प्रकार से मैं अपने सामने इसको पिक्चर तस्वीर बनाता हूँ.
Somebody gets angry with me or provokes me in some way.
कोई मुझे उत्तेजित करता है या मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है.
I say, here I am lying as a dead man.
तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये देखो मेरी लाश यहाँ पर है.
I'm lying as a dead man here.
यहाँ पे मरे हुए व्यक्ति के समान.
Somebody comes and shouts at me.
और कोई आकर मुझ पर चिल्लाता है.
What is the reaction in that?
तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी?
If he is really dead, not pretending to be dead.
अगर जो वो असली में मर चुका है, नाटक नहीं कर रहा है.
No reaction.
तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी.
That is what it means to reckon yourself dead to sin.
और यही है कि पाप में मरना.
Now that's not only when somebody criticizes you.
ना केवल जब कोई आपकी बुराई करता है.
What if somebody praises you?
जब कोई आपकी महिमा करता है.
And says some very good thing about you.
और कोई आपके बारे में बहुत अच्छा कहता है.
You don't get puffed up.
तो उस समय आपको फूलना नहीं है.
Because you go to this dead man.
क्योंकि इस मरे हुए व्यक्ति के पास जाएं.
Oh, you're such a wonderful man.
कि आप बहुत खूबसूरत व्यक्ति
हैं. You're a great man of God.
आप परमेश्वर के महान व्यक्ति हो.
He's not affected by it.
और उसको कोई असर नहीं होता.
It's a wonderful thing to be dead to the world.
और ये बहुत ही अच्छी बात है संसार के लिए मर जाना.
Alive unto Christ.
और प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहना.
That was not possible in the old covenant.
और ये पुराने नियम में संभव नहीं था.
It's possible in the new covenant.
लेकिन नए नियम में संभव है.
The Holy Spirit helped Jesus to die. The Holy Spirit will help me to die.
और पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की सहायता किया मरने के लिए और वही पवित्र आत्मा मेरी भी सहायता करेगा मरने के लिए.
To myself in every situation.
और हर एक परिस्थिति में मैं ऐसे ही सोचता हूँ.
Why did Jesus say take up the cross every day?
प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हर रोज अपने क्रॉस को उठाओ?
Because every day we are facing some temptation.
क्योंकि हर रोज हम कोई ना कोई प्रलोभन का सामना करते हैं.
People praise us or criticize us.
परमेश्वर लोग हमारी बुराई करते हैं या बढ़ावा करते हैं.
The praise can puff us up with pride.
अगर जो कोई हमारा महिमा करता है चढ़ाते हैं तो हम फूल जाते हैं.
And the criticism can make us angry.
अगर जो कोई बुराई करता है तो हमें क्रोध आता है.
For everything we need to die.
तो हर एक चीजों में हमें मरना है.
It's not only every day.
ना केवल हर रोज.
2 Corinthians 4.
दूसरे कुरिन्थियों 4.
It says we must always, verse 10. Carry about in our body the dying of Jesus. 2 Corinthians 4:10.
दूसरे कुरिन्थियों 4:10.
Always carrying in our body the dying of Jesus, so that the life of Jesus will be seen in our body.
हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो.
Why always?
क्यों हमेशा?
Not just once a day.
केवल एक बार नहीं.
Always means throughout the day I can be tempted by so many people.
इसका अर्थ यह है कि हर समय हमारे किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में प्रलोभन आ सकता है.
I would keep asking myself.
तो मुझे अपने आप से पूछना है.
How will a dead man react to this?
कि एक मरा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाएगा इस विषय के ऊपर?
How will a dead person react to this?
एक लाश जो है किस प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाएगा?
He will not be affected.
और उसको कोई असर नहीं होगा.
This is the meaning of reckon yourself dead, Romans 6:11.
और रोमियो 6:11 यही कहता है कि अपने आप को जो है मरना है.
This is the meaning of always carrying in our body the dying of Jesus.
और यही है हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ मरना.
What is the reward you'll get?
और उसका फल, उसका दान, उसका तोहफा क्या मिलेगा?
Same verse, the life of Jesus will come forth in you.
और प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर आएगा.
The Bible says, if you die with him, you will live with him.
हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि अगर जो आप उसके साथ मरते हैं तो आप उसके साथ जिएंगे.
Then you ask yourself this question.
तो अपने आप से ये प्रश्न करें.
In some situations, why is the life of Jesus not being manifested in you?
कुछ परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन क्यों नहीं दिखाता है?
Answer 2 Corinthians 4:10.
और उसका उत्तर है दूसरे कुरिन्थियों 4:10.
You are not dying with Jesus at that time.
क्योंकि उस समय आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं मरे.
That is why your own life comes forth, not the life of Jesus.
इसलिए आपका जीवन वहाँ पे प्रकट होता है, ना कि प्रभु यीशु मसीह का.
Your life is the life of the flesh, the life of Adam.
क्योंकि आपका जीवन जो है वो आदम का है और आपका शरीर का है.
Okay, I'll give you one example and finish.
एक उदाहरण देकर खत्म करता हूँ.
John's Gospel chapter 7.
John 7:7.
We read here that Jesus came and preached in the temple one day.
यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आकर आराधनालय में का प्रचार करता है.
Preaching the whole day.
और वो पूरे दिन जो है वहाँ पे प्रचार करता है.
And at the end of the day.
और दिन के आखिर में.
Remember, this is in Jerusalem.
और याद रखें कि ये यरूशलेम आराधनालय में.
Jesus' home was in Capernaum, which is about 100 kilometers away.
और प्रभु यीशु मसीह का घर कफरनहूम में है, जो कि 100 किलोमीटर दूर है.
And now he's in Jerusalem.
और इस समय वो यरूशलेम में है.
He's preaching there.
वहाँ पे वो प्रचार कर रहा है.
And it says at the end of the day.
और वो आखिर में कहता है.
Last
दिन
word,
के आखिर में.
John 7:53 last verse.
और साथ उसका 53 आखिरी वर्स है वो.
Everybody went to their own house.
वहाँ पे लिखा है तब सब कोई अपने अपने घर को गए.
But where was Jesus' house?
लेकिन प्रभु यीशु मसीह का घर कहाँ था?
100 kilometers away.
100 किलोमीटर दूर.
Nobody asked him, where are you staying tonight?
किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ पे रहोगे आज की रात को, आज की रात कहाँ बिताओगे?
Lord, please come to my house.
हाँ, कि प्रभु आज तू मेरे घर पर आ.
Imagine all those people who were blessed by the message never asked him where he is staying that night.
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतने सारे लोगों ने उसके प्रचार के द्वारा आशीष पाया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम आज रात को कहाँ ठहरोगे.
How ungrateful they were for the blessing they got.
देखिएगा कितना कठोर दिल के हैं वो, बिल्कुल आभारी नहीं मानते हैं.
So what did Jesus do?
तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया?
He didn't complain.
उसने शिकायत नहीं किया.
It says in verse 1, next verse, Jesus went to the Mount of Olives.
और 8:1 में वहां पे लिखा हुआ है वो पहाड़ पर गया, जैतून पहाड़ पर.
This is one sentence.
एक शब्द है.
Everyone went to his own house, but Jesus went to the Mount of Olives.
और सब अपने अपने घर को चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गए.
आई एम श्योर If somebody had asked Jesus to come to his house, he'd have gone to that house.
हाँ, मैं पूरे सामर्थ्य के साथ कहता हूँ कि क्या कहते हैं, अगर जो किसी ने उसको घर में बुलाया होता तो भी वो नहीं जाता.
When he went to Emmaus and the two people said, "Come to our house," he went.
और हाँ, अमाउस में गया तो दो लोगों ने उनको बोला कि मेरे घर पर आओ, तो वो वहाँ पे चला गया.
But here nobody called him.
लेकिन यहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया.
Looks around, everybody's gone.
वो चारों तरफ देखता है, सर घुमा के, किसी सब लोग चले गए.
What shall I do?
तो मैं क्या करूँ?
Well. Praise God, it's not raining.
हाँ, praise God, बारिश नहीं हो रहा.
I can go and sleep under the trees.
तो मैं किसी पेड़ के नीचे सो सकता हूँ.
No complaint.
कोई शिकायत नहीं.
Perfectly happy.
और बिल्कुल खुश.
Next morning.
अगले सुबह.
Verse 2.
दूसरे वचन में.
He comes to the temple.
वो फिर मंदिर में आया.
And all the people came.
और सब लोग उसके पास आए.
Sat down.
और बैठकर.
Nobody asked him. By the way, Lord, where did you stay last night?
और किसी ने ये नहीं पूछा कि पिछली रात को आप कहाँ बिताए, कहाँ रात गुजारा.
Can you imagine the ungratefulness of these people.
देखेगा कि कैसा हृदय इन लोगों का, बिल्कुल आभारीपन नहीं.
And he also does not mention anything.
और इसने भी कुछ नहीं कहा.
You know how sometimes we like to make people feel bad by saying, you know, last night I was sleeping under the trees in the Mount of Olives or something.
ध्यान दीजिएगा, कई बार हम दूसरों को बुरा लगने के लिए हम बोलते हैं कि अरे पिछले रात को मैं जो है पेड़ के नीचे सोया था.
There are preachers like that who give little hints in
their preaching about
something.
जो थोड़ा सा जो है देते हैं.
He never said a word.
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा.
Why?
क्यों?
He died to himself.
क्योंकि वो अपने आप में मर गया था, मर चुका था.
A dead man doesn't complain if somebody doesn't.
क्योंकि एक मरा हुआ व्यक्ति कभी भी शिकायत नहीं कर सकता उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करते हो.
They don't treat me well. What does it matter?
अगर जो उन्होंने किसी ने बुरा बर्ताव किया तो कोई बात नहीं.
This is how Jesus lived.
प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से जीवन जिया।
When people called him Beelzebul, prince of devils,
और लोगों ने कहा कि बेलज़ेबूब यानी कि शैतान का प्रभु।
He said forgiven.
उसने बोला कि क्षमा किया।
To bear the dying of Jesus means that's the way I go.
यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने का मतलब है वैसे के वैसे।
If I die like that,
अगर जो मैं उस समान मरता हूँ,
say Lord, I want to be like a dead man.
तो मैं बोलूंगा कि मैं उस मरे हुए व्यक्ति के समान नहीं।
If people don't invite me to their home, I just go sleep under the trees.
हाँ, अगर जो वो मुझे अपने घर नहीं लेके गए तो कोई बात नहीं, मैं पेड़ के नीचे सोऊंगा।
Railway station or somewhere.
नहीं तो रेलवे स्टेशन कहीं पे भी।
But I will not complain.
लेकिन मैं शिकायत ना करूंगा।
Because I've died.
क्योंकि मैं मर चुका हूँ।
Then you will be able to experience Christ strengthen me. I can do everything.
तब आप महसूस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ्य दिया और मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
Let's pray.
आइए हम प्रार्थना करें।
Heavenly Father,
स्वर्गीय पिता,
help us to be gripped by these truths.
पिता परमेश्वर, ये सच्चाई से जकड़े जाने के लिए तू मदद कर।
So that we can really experience the strengthening of Christ.
ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को अनुभव कर सकें।
Jesus name.
यीशु के नाम से।
Amen. Amen.